नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दानियल ने दर्शन देखा और उसके अर्थ को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे समझाया। इतना ही नहीं, हमने यह भी देखा कि दानियल मूर्छित हो गया और उसे यह बताया गया कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसे जल्द ही मिल गया था, परंतु उत्तर को उस तक पहुंचाने में स्वर्गदूत को देरी हुई। उसका कारण हमें बताया गया कि शैतान की सेनाएं उससे लड़ रही थी। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि हम इस संसार में अंधकारमय शक्तियों से लड़ते हैं, ना कि किसी व्यक्ति से। और इस प्रकार से हमने पिछले अध्ययन को समाप्त किया था। आज हम अपने अध्ययन को दानियल नबी की पुस्तक उसके 11 अध्याय से आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, पिताजी आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि आपका हर एक वचन उनके जीवन में कार्य कर सके, उन्हें शांति और आनंद दे सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, परंतु बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी आप उन्हें छुए और चंगाई दें, उन्हें अपनी शांति दें, ताकि एक एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के इस अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम दानियल नबी की पुस्तक उसके 11 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। तो इस अध्याय का विषय है दर्शन चल रहा है, जिसे हमने पिछले अध्ययन में भी देखा था। और तब हम देखते हैं एंटियोकस एपिफनस की पहचान, मनुष्य के पाप का विष और इच्छा, स्वैच्छिक राजा की विजय जो क्षणिक है। मेरे मित्रों, अध्याय 10 से 12 में एक ही दर्शन है, अतः अध्याय 11 और अध्याय 10 का भी यही भाग है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें अध्याय 9 के 70 सप्ताह का कुछ अंश दिया गया है, जो विशेष करके दानियल के लोग इसराइल से संबंधित है। इसमें कई धातुओं की मूर्ति, जिसे हम अध्याय 2 में देख चुके हैं, अध्याय 2 के अंतिम 3 राष्ट्र और अध्याय 7 के पशुओं के संबंध में भी वर्णन किया गया है। इस अध्याय के महत्व ही के कारण शैतान उस स्वर्गदूत को दानियल के पास आने से रोक रहा था कि उसकी प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि यह भविष्यवाणी दानियल के लोगों के संबंध में 2 राष्ट्र फारस और यूनान के बारे में थी। मेरे मित्रों, इससे अध्याय का एक और महत्वपूर्ण योगदान है कि यह पुराने नियम और नए नियम को भविष्यवाणी द्वारा जोड़ता है। हम कहते हैं कि पुराने और नए नियम के मध्य का समय निशब्द है, परंतु यह सच नहीं है। यह समय इसराइल के महान कष्टों का समय था। उन्होंने सीरिया और मिस्र के हाथों बहुत कष्ट सहे थे। ये दोनों राष्ट्र लड़ते रहते थे और इसराइल बीच में घुन के समान पिसता रहता था, क्योंकि उनकी सेनाएं इसराइल देश को रौंद रही थी। इसी समय एंतियोकस एपिफनस का उदय हुआ था, जो भावी ख्रिस्त विरोधी का स्वरूप था। इस अध्याय में हम उसे पहचानेंगे। वह मिस्र के राजा हामान, हिटलर या रूस से भी अधिक यहूदी विरोधी था। वह यहूदी इतिहास का नीरो कहलाता था और वही घृणित वस्तु भी था। मेरे मित्रों, इस अध्याय का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जो इतिहास और भविष्यवाणी को अलग अलग करता है। स्मरण रखें, आरंभ में तो यह केवल भविष्यवाणी ही था, परंतु अब तक इसका कुछ भाग पूरा हो गया है, इसलिए वह भाग इतिहास बन गया है। यह भविष्यवाणी जटिल है और एक सामान्य मानवीय समझ से अधिक गहराई में जाती है। अधिकांश मनुष्य भविष्यवाणी का उत्तेजनादायक और सनसनीपूर्ण भाग ही देखना चाहते हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन की गहराई में जाकर उसके कहने का उद्देश्य समझना नहीं चाहते हैं। यदि आप भविष्यवाणी की गहराई में रुचि रखते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए अति आनंद का अध्ययन होगा। तो मित्रों, हम देखते हैं कि अब दर्शन चल रहा है। यह भविष्यवाणी मादी, फारसी और यूनान के राज्यों के मध्य मार्ग तैयार करती है। यह भविष्यवाणी इसराइल के लिए है, क्योंकि वे इन विश्व शक्तियों के मध्य पिसेंगे, जो उनके लिए घोर कष्ट का समय होगा। तो आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय और उसके एक पद को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाब दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। मेरे मित्रों, यहाँ स्वर्गदूत बात कर रहा है और विषय अध्याय 10 का ही चल रहा है। यह स्वर्गदूत जिब्राइल हो सकता है, परंतु हमें नाम नहीं बताया गया है। याद रखें कि यह घटना राजा दारा के राज्यकाल की है, जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया था। दारा ने तो दानियल को बचाने का प्रयास किया, परंतु अपनी ही आज्ञा के सामने वह विवश था। परंतु उसने दानियल से कहा था, जिसे हम 6 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं, उसको हियाब दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। स्वर्गदूत ने दारा को हियाब बंधाया और बल दिया। उसने दानियल को भी हियाब बंधाया और बल दिलाया। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 22 पद में दानियल ने दारा से कहा था, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह ऐतिहासिक परिदृश्य में यह दर्शन यहाँ बैठता है और पुराने तथा नए नियमों को जोड़ता है, जिसे हम मध्यकालीन बाइबल युग भी कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं दानियल 11 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ, देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। इस पद से पद 34 तक लिखित इतिहास से पूर्व के अद्भुत उदाहरणों में से एक उदाहरण है। इस भाग के ही कारण विनाशकारी आलोचक इस पुस्तक के लिखे जाने का समय बाद में बताते हैं। यहाँ कुछ स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं, जो ज्यों की त्यों पूरी हुई हैं। ये भविष्यवाणियां ऐसी सही हैं कि आलोचक कहता है कि वे घटना के हो जाने के बाद लिखी गई हैं। मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी नहीं, इतिहास है। मेरे विचार में मुक्त विचारक छोटी बुद्धि के लोग हैं, जबकि वे अपने आप को उदारवादी कहते हैं और दावा करते हैं कि वे धर्मशास्त्र के विषय में छोटे विचार नहीं रखते। एक बार एक ऐसे ही मनुष्य ने मुझसे कहा कि वह मेरे रेडियो कार्यक्रम को सुनता है। उसके भाव से प्रकट होता था कि वह मुझे सम्मानित करना चाहता था। उसने कहा, मैं देखता हूं कि आप भविष्यवाणियों को विश्वास योग्य मानते हैं। उसने उदाहरण के लिए दानियल की पुस्तक का संदर्भ दिया। मैंने उससे पूछा कि वह किस आधार पर दानियल की पुस्तक की लेखन तिथि को अस्वीकार करके बाद की तिथि को मानता है। उसका उत्तर था, हम जानते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, और यदि दानियल की पुस्तक घटनाओं से पहले लिखी गई थी तो वह एक चमत्कार है, अतः वह घटनाओं के बाद ही लिखी गई है। मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह संकीर्ण मानसिकता नहीं है, पक्षपात है, त्रुटिपूर्ण है? यह स्पष्ट है और यह अध्ययन परमेश्वर के वचन का लिखित इतिहास से पूर्व का एक अत्यधिक असाधारण अध्याय है। रूढ़िवादी विचारक दानियल की पुस्तक की पूर्वकालिक तिथि स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके सामने एक चमत्कार है। मेरे मित्रों, स्वर्गदूत ने जब दानियल को यह जानकारी दी थी तब वह जानता था कि इस भविष्यवाणी की पूर्ति होने तक दानियल जीवित नहीं रहेगा। अतः स्पष्ट है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर की प्रजा के प्रोत्साहन और सांत्वना के लिए लिखी गई थी, क्योंकि उन्हें यहां वर्णित कष्टदायक समय में रहना होगा। यह सब पीढ़ियों के लिए भी एक गवाही है कि परमेश्वर आरंभ और अंत के समय को जानता है। स्वर्गदूत ने उसे बताया कि कुसरो के बाद फारस के चार मुख्य राजा होंगे। मेरे विचार में आज हम उन्हें पहचान सकते हैं। पहला कैम्बिसेस 529 ईस्वी पूर्व, दूसरा स्मर्दिस 522 ईस्वी पूर्व, तीसरा दारा हिस्तास्पिस 521 ईस्वी पूर्व और चौथा शयर्स, जिसने 480 ईस्वी पूर्व में यूनान पर आक्रमण किया था। उसकी हार के बाद मादी फारसियों ने फिर कभी विश्व राज्य का स्वप्न नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शयर्स एस्तेर की पुस्तक का ही शयर्स है। वह बहुत धनवान था, जैसा कि यहाँ भविष्यवाणी में कहा गया है। हम पढ़ते हैं दानियल 11 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। लिखा है पराक्रमी राजा, यह यूनान का सिकंदर महान था जो 335 ईस्वी पूर्व में उठा था। उसने फारस को हराकर विश्व प्रभुता अपने हाथ में ले ली थी। दानियल 11 के 4 पद में लिखा है, जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, सिकंदर महान एक विश्व शासक था और संसार का सबसे बड़ा और सबसे महान युद्ध रणनीति विशेषज्ञ था, परंतु 323 ईस्वी पूर्व में वह शराब पीने के कारण मर गया। उसके इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी उसकी संतान को नहीं मिला। उसके 4 सेनापतियों ने उसके साम्राज्य को भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार से आपस में बांट लिया था। कसांदर ने मकीदुनिया को लिया, लिसिमेकस ने एशिया माइनर जो आज तुर्किस्तान है, सेल्यूकस निकातोर ने सीरिया और मध्य एशिया का शेष भाग लिया, और तोलोमी ने मिस्र को लिया। ये चारों आपस में लड़ते रहते थे और परिणाम यह हुआ कि जब रोम पूर्व की ओर बढ़ा तो वे रोम द्वारा पराजित किए गए। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 पद में हम आगे पढ़ते हैं। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। दक्षिण देश का राजा, बाइबल में दिशाएं यरूशलेम को केंद्र मानकर दर्शाई गई है। अतः यरूशलेम के दक्षिण में मिस्र है। दक्षिण का यह राजा तोलोमी होगा। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 6 पद में आगे लिखा है, कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। लिखा है दक्षिण देश के राजा सेल्यूकस का वंश। यह पद लगभग 250 ईस्वी पूर्व की चर्चा कर रही है। यद्यपि इतिहासकार छोटी मोटी बातों पर मतभेद रखते हैं, उन्होंने उस युग के राज दरबार की घटनाओं का उल्लेख किया है जिनके द्वारा इस भविष्यवाणी की पूर्ति सर्वथा सही होती है। इन दोनों युद्ध करने वाले परिवारों में समझौता करवाने के लिए मिस्र के टोलेमी फिलादेफुस ने सीरिया के अंतियोकस एपिफनस के साथ अपनी पुत्री बर्निस का विवाह कर दिया था। उसने अपनी पहली पत्नी लाओदीस को तलाक दे दिया था। और तब हम देखते हैं कि 2 वर्ष बाद तोलमी फिलादेल्फुस की मृत्यु हो जाने के बाद एंथियोकस थियोस ने बर्निस और उसके पुत्र को त्याग कर अपनी पहली पत्नी को फिर से ले लिया। उसने एंथियोकस थियोस को जहर दे दिया और बर्निस तथा उसके पुत्र को मरवा दिया और अपने पुत्र सेल्यूकस कलिनिकस को सिंहासन पर बैठाया। यह दानियल को दी गई भविष्यवाणी में स्पष्ट किया गया है। तब हम आगे पढ़ते हैं दानियल 11 अध्याय के 7 पद में, फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी, वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। मेरे प्रियो, यह बर्निस का भाई तुलमी यूअरगेतेस, वह अपने सेना के साथ आया और सीरिया को जीत लिया और उस युग के अंताकिया के बंदरगाह के किले को अपने अधिकार में ले लिया। आगे हम पढ़ते हैं दानियल 11 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। इतिहास में व्यक्त है कि तोलमी यूअरगेतेस ने 4000 माप सोना, 4000 माप चांदी और 2500 मूर्तियां लूटी और मिस्र को ले गया। देखिए यह भविष्यवाणी कैसे ज्यों की त्यों पूरी हुई। दानियल 11 अध्याय उसके 10 से 13 पद में हम पढ़ते हैं, उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। मेरे मित्रों, मिस्र और सीरिया में लगातार युद्ध होते रहते थे। इस बीच इसराइल गलत निर्णय लेता रहा और कभी एक के द्वारा तो कभी दूसरे के द्वारा दासत्व में लिया जाता रहा है। हम पढ़ते हैं दानियल 11 उसके 14 पद में, उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। इस समय इसराइल के असंख्य निवासी मारे गए और उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के राजाओं के हाथों कष्ट सहते रहे। लिखा है दानियल 11 उसके 15 और 16 पद में, तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल ना रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। लिखा है शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा। अब हमारी समझ में आता है कि यह भविष्यवाणी दानियल को क्यों सुनाई गई थी। यह शिरोमणि देश अर्थात इसराइल के संबंध में है, वह देश जिसकी प्रतिज्ञा अब्राहम से और उसके वंशजों से की गई थी। ये दो पद उस इतिहास की भविष्यवाणी हैं, जिसमें एंथियोकस महान ने मिस्र पर बड़ी विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के कारण इसराइल को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। दानियल की भविष्यवाणियों में लगभग 125 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। हम आगे पढ़ते हैं दानियल 11 अध्याय के 17 पद में, तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी न उस राजा की होगी। यह लगभग 199 या 195 ईस्वी पूर्व का समय था। एंथियोकस महान ने तोलमी एपिफेनेस के साथ अपनी पुत्री क्लियोपत्रा का विवाह किया था। दानियल के पुस्तक 11 अध्याय उसके 18 से 20 पद में आगे लिखा है, तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वह द्वीपों की ओर मुंह करके अर्थात सब यूनानी द्वीपों की ओर। अंतियोकस महान इस समय उसी दिशा में बढ़ रहा था, दक्षिण में टोलेमी की ओर ही नहीं पश्चिम में लिसिमेकस की ओर भी वह बढ़ रहा था। लिखा है एक सेनापति अर्थात रोम जो इस समय पश्चिम की ओर अग्रसर था। रोम सीरिया से कर वसूल कर रहा था। रोमी संसार के सबसे बड़े कर वसूल करने वाले रहे हैं। रोम जहां जहां राज्य करता रहा है वहां से बहुत कर वसूल कर अपने राज्य को महान बना रहा था। सीरिया के पतन के साथ अनेक ऐतिहासिक तथ्य इस भविष्यवाणी में आते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि दानियल नबी के द्वारा कही गई भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और कुछ होने वाली है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपने इस अध्ययन के द्वारा उन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखा है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर का वचन वैसा ही सामर्थी है जैसे उस समय था। आज हमें वचन दिया गया है, पवित्र वचन, ताकि इसकी बातों को हम सुने, क्योंकि यह भी पूर्ण होने वाला है। आज के अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। इसके अलावा हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
दिन रात शाम सवेरे झुकूं मैं आगे तेरे, विश्वास है तू न फेरे, दयालु यीशु मेरे। दिन रात शाम सवेरे झुकूं मैं आगे तेरे, विश्वास है तू न फेरे, दयालु यीशु मेरे। तुझ तक पहुंचे पुकार मेरे ईश्वर, देख तू मुझको आंखों में ममता लेकर। तुझ तक पहुंचे पुकार मेरे ईश्वर, देख तू मुझको आंखों में ममता लेकर। सवेरे झुकूं मैं आगे तेरे, विश्वास है तू न फेरे, दयालु यीशु मेरे। हर दम खींचे, डूब न जाऊं लहरों के नीचे, मौत मुझको हर दम खींचे। समझेगा मेरे तू आंसू की भाषा, सिर्फ है इतनी सी आशा। दिन रात शाम सवेरे झुकूं मैं आगे तेरे, विश्वास है तू न फेरे, दयालु यीशु मेरे। दिन रात शाम सवेरे झुकूं मैं आगे तेरे, विश्वास है तू न फेरे, दयालु यीशु मेरे। सहारा जीवन सागर का तू ही किनारा, एक तेरा ही तो है सहारा, जीवन सागर का तू ही किनारा। गलत राहों पे कदम न बहके, खुशबू बन के जीवन में के। दिन रात शाम सवेरे तेरे